एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। हो सकता है आज के जमाने में थोड़ी अलग लगे, पर जरूरी भी उतनी ही है। रॉजर स्क्रूटन की ब्यूटी, सुंदरता।
नमस्कार।
और अलग शायद इसलिए क्योंकि आज की दुनिया में अब देखिए हर चीज की कीमत या तो उसके काम आने से है या फिर वो कितनी नई है।
हाँ बिल्कुल।
ऐसे में सुंदरता की बात कौन करता है? ज्यादातर तो लोग कह देते हैं भाई ये तो पर्सनल चॉइस है, तुम्हें अच्छा लगा मुझे नहीं, बात खत्म।
सही कहा।
और बस यहीं पर स्क्रूटन एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या सुंदरता सच में इतनी हल्की चीज है? क्या ये बस हमारी पसंद नापसंद है या फिर इसका कोई गहरा, शायद कहे तो सार्वभौमिक महत्व है जिसे हम मतलब देख ही नहीं रहे?
और ये सवाल आज बहुत बहुत प्रासंगिक है। सोचिए ना, हमारे शहर कैसे बन रहे हैं, हमारे घर कैसे दिखते हैं, यहाँ तक कि कला संगीत में भी, क्या हम वाकई सुंदरता को जगह दे रहे हैं?
या फिर हम बस काम चलाओ चीजों के पीछे भाग रहे हैं, या कुछ ऐसा जो बस चौंका दे, है ना?
बिल्कुल।
या फिर बस अलग दिखना चाहिए। स्क्रूटन की किताब इन्हीं सब सवालों पर हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें। सर रॉजर स्क्रूटन 1944 में जन्मे, 2020 में उनका देहांत हुआ। ब्रिटेन के बहुत माने हुए दार्शनिक लेखक थे।
हाँ, और अपनी थोड़ी रूढ़िवादी सोच के लिए भी जाने जाते थे, पर विद्वान बहुत थे।
हाँ, विद्वत्ता तो कमाल की थी।
50 से ज्यादा किताबें, आप सोचिए, और सिर्फ फिलॉसफी पर नहीं, राजनीति, संस्कृति, संगीत, कला, वास्तुकला, क्या नहीं लिखा उन्होंने।
सही कहा, ऐसा लगता है ज्ञान का कोई कोना छोड़ा ही नहीं। और सुंदरता यानी एस्थेटिक्स, वो तो उनका खास विषय था।
पर मजे की बात यह है कि वो सिर्फ कमरे में बैठ के सोचने वाले दार्शनिक नहीं थे। वो खुद संगीत बनाते थे, उपन्यास लिखते थे, यहाँ तक कि वाइन के भी बड़े पारखी थे।
अच्छा।
हाँ, तो मतलब वो सुंदरता को सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि अनुभव करके, जीकर समझते थे।
और शायद यही बात उन्हें खास बनाती है ना, कि वो सुंदरता के जो पारंपरिक विचार हैं उनके बड़े समर्थक थे। उन्होंने प्लेटो, कांट जैसे पुराने दार्शनिकों के विचारों का इस्तेमाल किया,
हाँ,
ये दिखाने के लिए कि आज की जो सोच है जो सुंदरता को गैर जरूरी मानती है वो शायद सही नहीं है। स्क्रूटन का तो मानना था कि सुंदरता का गायब होना सिर्फ टेस्ट बदलने जैसा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक तरह का सांस्कृतिक और शायद आध्यात्मिक खालीपन है।
तो अच्छा, अब किताब पर आते हैं। ये किताब असल में है क्या, क्या कहेंगे इसे?
इसे हम कह सकते हैं कि ये सुंदरता के बचाव में एक तरह का घोषणा पत्र है। स्क्रूटन बहुत जोर देकर ये बात कहते हैं कि सुंदरता सिर्फ आपकी या मेरी पसंद नहीं है, ये एक असली वस्तुनिष्ठ चीज है, ऑब्जेक्टिव। मतलब सुंदरता चीजों में होती है, सिर्फ हमारे देखने के नजरिए में नहीं।
अच्छा, ये एक बड़ा दावा है वैसे।
हाँ बिल्कुल। और उनका जो सबसे केंद्रीय तर्क है वो ये है कि सुंदरता हमें किसी ऊंची चीज से, किसी पवित्र चीज से जोड़ती है, सेक्रेड।
पवित्र मतलब धार्मिक अर्थों में?
जरूरी नहीं कि सिर्फ धार्मिक हो, मतलब कुछ ऐसा जो रोजमर्रा की खींचतान से ऊपर हो, जो जीवन को गहरा मतलब दे। स्क्रूटन मानते हैं कि सुंदरता एक तरह से आध्यात्मिकता का दरवाजा खोल सकती है।
अच्छा।
और जब आज की दुनिया, खासकर कला और संस्कृति में, सुंदरता को नकारती है, तो वो खुद को इसी गहरे अनुभव से दूर कर लेती है, खुद को एक तरह से आध्यात्मिक तौर पर गरीब बना लेती है।
तो ये किताब उन लोगों के लिए है जिन्हें कभी कभी लगता है कि आजकल की दुनिया में कुछ कुछ कमी सी है, कुछ खोसा गया है, पर शायद वो बता नहीं पाते कि क्या।
बिल्कुल। स्क्रूटन सुंदरता के दार्शनिक पहलू से शुरू करते हैं और फिर हमें कला, वास्तुकला, संगीत, यहाँ तक कि हमारी रोज की जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है, ये समझाते हैं।
और ये कोई पुरानी यादों में खोना नहीं है जैसा आपने कहा?
नहीं नहीं ये गुजरे जमाने का मोह नहीं है। स्क्रूटन कहते हैं ये इंसान होने के नाते हमारी एक बुनियादी जरूरत है। किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि हमने सुंदरता क्यों खो दी, बल्कि ये भी इशारा करती है कि उसे वापस कैसे पाया जाए। मतलब जानबूझकर, सोच समझकर सुंदरता को अपने जीवन में जगह देकर।
चलिए, ये तो दिलचस्प लग रहा है। अब जरा किताब के कुछ खास विचारों में थोड़ा और गहरे चलते हैं। स्क्रूटन शुरू कहां से करते हैं?
वो शुरू करते हैं इस विचार से कि जब हम किसी चीज को सुंदर कहते हैं तो ये सिर्फ ये कहना नहीं होता कि मुझे पसंद है।
अच्छा, तो क्या होता है?
ये एक तरह का दावा होता है कि इस चीज में वाकई कुछ ऐसा है जो दूसरों को भी सुंदर लगना चाहिए।
जहां वो जर्मन दार्शनिक कांट के एक विचार का जिक्र करते हैं, निस्वार्थ चिंतन।
निस्वार्थ चिंतन,
थोड़ा आसान शब्दों में।
आसान मतलब ये कि हम सच्ची खूबसूरती को उसके अपने लिए सराहते हैं। इसलिए नहीं कि उससे हमारा कोई फायदा होगा या हमारी कोई जरूरत पूरी होगी। जैसे मान लीजिए कोई बहुत सुंदर पेंटिंग है,
हाँ,
उसे देखकर जो खुशी मिलती है वो अलग है। वो इस इच्छा से अलग है कि मैं इसे खरीद लूं या इसे पैसे कमाऊं। वो बस उस सुंदरता को महसूस करने की खुशी है अपने आप में।
समझ गया। अच्छा, फिर वो इंसानी सुंदरता पर भी बात करते हैं।
हाँ, और ये एक बहुत नाजुक विषय है।
स्क्रूटन का कहना है कि इंसानी सुंदरता सिर्फ बाहरी रूप रंग नहीं है, इसमें नैतिकता और आध्यात्मिकता भी जुड़ी है। सच्ची सुंदरता इंसान के चरित्र की, उसकी आत्मा की झलक होती है।
और यहीं पर वो एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं।
किस चीज में?
असली कामुक कला मतलब एरोटिक आर्ट और पोर्नोग्राफी के बीच। वो कहते हैं असली कला इंसान का सम्मान करती है, उसकी गहराई दिखाती है, जबकि पोर्नोग्राफी इंसान को बस एक चीज बना देती है, इस्तेमाल की वस्तु।
हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है।
बिल्कुल। वो कहते हैं इससे इंसान की गरिमा, उसकी असली सुंदरता खत्म हो जाती है। ये आज की संस्कृति पर भी एक तरह की टिप्पणी है, जो शायद सच्ची मानवीय सुंदरता का सामना करने से कतराती है।
और प्रकृति की सुंदरता के बारे में क्या कहते हैं? पहाड़, फूल, नदियाँ?
हाँ, उसका भी स्क्रूटिन के लिए बहुत महत्व है। ये चीजें हमें सिर्फ अच्छी नहीं लगती, वो हमें सुकून देती हैं। हमें लगता है कि हम इस दुनिया का हिस्सा हैं।
हाँ, जुड़ाव महसूस होता है।
बिल्कुल। स्क्रूटिन कहते हैं कि प्रकृति की सुंदरता देखकर हमें लगता है कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था है, कोई तालमेल है, कोई मतलब है। भले ही हम किसी बनाने वाले भगवान में यकीन करें या ना करें, ये अनुभव अपने आप में बहुत कीमती है।
अच्छा, ये वाला अध्याय मुझे सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। रोजमर्रा की सुंदरता, क्या मतलब है इसका?
हाँ, ये मुझे भी बहुत पसंद आया। स्क्रूटिन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सुंदरता सिर्फ म्यूजियम या आर्ट गैलरी की चीज नहीं है, वो हमारे घरों में होनी चाहिए, हमारी गलियों में, हमारी रोज की इस्तेमाल की चीजों में। वे आजकल की बहुत सी बिल्डिंग्स की आलोचना करते हैं जो सिर्फ काम चलाने के लिए बनी है, बिना ये सोचे कि उनमें रहने या काम करने वाले इंसानों को कैसा लगेगा।
हाँ, वो फॉर्म फॉलोज फंक्शन वाला सिद्धांत।
बिल्कुल। रूप वही जो काम आए। स्क्रूटिन कहते हैं ये नारा कई पर सुंदरता और इंसानियत दोनों को भुला देता है। सोचिए ना, हमारे यहाँ भारत में पुराने घर, पारंपरिक मोहल्ले,
हाँ,
या कारीगरों के हाथ की बनी चीजें,
हाँ,
उनमें कैसे सुंदरता और उपयोगिता साथ साथ चलती थी। आज के कंक्रीट के जंगल अक्सर इसे भूल जाते हैं।
सही कहा। अच्छा, फिर कला की दुनिया पर आते हैं। स्क्रूटन कहते हैं कि पहले कला का मकसद ही सुंदरता रचना था।
हाँ, पारंपरिक रूप से तो यही था। कलाकार रूप, बनावट, तालमेल, इन सब पर बहुत ध्यान देते थे। सालों लगते थे हुनर सीखने में, ताकि कुछ सुंदर बना सके।
और आज
स्क्रूटन आज की उस कला पर सवाल उठाते हैं जहां सिर्फ नया करने या चौंकाने या नियम तोड़ने पे ज्यादा जोर है। भले ही नतीजा भद्दा लगे या बेमतलब हो, उनका मानना है कि सिर्फ नया या अलग होना कला का मकसद नहीं हो सकता।
फिर वो किच और अपवित्रीकरण की बात करते हैं, ये क्या है?
हाँ, ये दो बड़े दिलचस्प शब्द हैं। किच, इसका मतलब है नकली सतही सुंदरता, जो जरूरत से ज्यादा मीठी या भावुक हो, जो असली भावना के बिना ही हमें भावुक बनाने की कोशिश करें।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे वो रोते हुए बच्चों की बहुत ज्यादा रंगीन पेंटिंग्स होती हैं, या बहुत बनावटी शेरो शायरी वाले ग्रीटिंग कार्ड। ये असली सुंदरता और गहरी भावना से दूर हैं, एक तरह का धोखा है।
अच्छा, और अपवित्रीकरण, डेसिक्रेशन,
इसका मतलब है जानबूझकर उन चीजों का मजाक उड़ाना या उन्हें बिगाड़ना जिन्हें समाज पवित्र या महत्वपूर्ण मानता है, या जो पारंपरिक रूप से सुंदर मानी जाती हैं। स्क्रूटन एक उदाहरण देते हैं मार्सेल डुचैम्प के मशहूर फाउंटेन का।
हाँ, वो यूरिनल वाला आर्टवर्क।
हाँ, वही जिसे आर्ट गैलरी में रख दिया गया था। स्क्रूटन कहते हैं ये कला नहीं, ये सिर्फ एक उकसावा है, एक इशारा है जो सुंदरता और कला के असली मायने को नतारता है। एक तरह से पवित्रता का मखौल उड़ाना है।
समझ गया। और अंत में वो सुंदरता को फिर से पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ते हैं।
हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि सुंदरता हमें इस भाग दौड़ वाली दुनिया से ऊपर उठा सकती है, किसी गहरे सच, किसी बड़े मतलब की झलक दिखा सकती है, खासकर आज के जमाने में जब धर्म का असर शायद कम हो रहा हो। तब सुंदरता हमें वो सुकून, वो जुड़ाव दे सकती है जो शायद हमें और कहीं ना मिले। ये हमें आशा दे सकती है, जीवन में एक मकसद का एहसास करा सकती है।
तो अगर इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो पहली क्या होगी?
जरूरी बात यह है कि सुंदरता सिर्फ देखने वाले की आंखों में नहीं होती, वो चीजों में मौजूद एक असली गुण है, ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं। इस पर बात हो सकती है, इसे समझा जा सकता है, ये सिर्फ मेरी मर्जी का मामला नहीं।
ठीक है, और दूसरी बात?
दूसरी बात, सुंदरता का गहरा नैतिक और आध्यात्मिक असर होता है। यह हमें सिर्फ खुशी नहीं देती, बल्कि शायद बेहतर इंसान बनने, ज्यादा संवेदनशील होने में मदद करती है। सोचिए, हमारे यहाँ मंदिरों की वास्तुकला, मूर्तिकला या शास्त्रीय संगीत और नृत्य,
हाँ, उन्हें हमेशा आध्यात्मिकता और ऊंचे मूल्यों से जोड़ा गया है, वो सिर्फ मनोरंजन तो नहीं थे।
बिल्कुल। तीसरा, आज की कला और खासकर वास्तुकला में सुंदरता को नजरअंदाज करने से हमारे आसपास का माहौल बेरंग और अमानवीय बन गया है। जब इमारतें सिर्फ काम चलाओ बनती हैं, तो उनमें रहने वालों की रूह सूख सी जाती है।
हाँ, ये तो दिखता है, हमारे शहर कई बार कंक्रीट के जंगल ही लगते हैं। चौथा मुद्दा क्या था?
चौथा, हमें नकली सुंदरता यानी किच और मूल्यों का मजाक उड़ाने वाली अपवित्रीकरण की प्रवृत्ति से सावधान रहना होगा। ये दोनों हमें सच्ची सुंदरता और गहले मतलब से भटकाती हैं, हमें ज्यादा सतही बना देती हैं।
और पांचवा
जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा काम का है, सुंदरता हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी है। ये कोई अमीरों का शौक या फालतू चीज नहीं है, ये हम सबकी एक बुनियादी जरूरत है।
जैसे अब अच्छा खाना शरीर के लिए जरूरी है,
बिल्कुल वैसे ही सुंदरता आत्मा के लिए जरूरी है। हमारे यहाँ के पारंपरिक कारीगर जो साधारण चीजों को भी कितना खूबसूरत बना देते हैं, वो इस बात को शायद हमसे बेहतर समझते हैं।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां भी हैं जो याद रह जाती हैं, कोई खास उद्धरण?
हाँ, कई हैं। जैसे स्क्रूटन कहते हैं, सुंदरता एक परम मूल्य है जिसे हम उसके अपने लिए चाहते हैं और जिसके लिए किसी और कारण की आवश्यकता नहीं होती।
ये तो बहुत गहरी बात है, मतलब सुंदरता अपने आप में कीमती है, उसे किसी और चीज के लिए उपयोगी होने की जरूरत नहीं।
बिल्कुल, ये हमें हर चीज को फायदे के तराजू पर तोलने की आदत से बाहर निकालता है। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सुंदर कलाकृति दुख में सांत्वना और खुशी में पुष्टि देती है, यह दिखाती है कि मानव जीवन जीने लायक है।
वाह, ये सुंदरता के मरहम लगाने वाले पहलू को दिखाता है ना? मुश्किल वक्त में कोई सुंदर संगीत या नजारा सच में हौसला दे सकता है।
हाँ, और एक थोड़ी तीखी टिप्पणी भी है जो आज के माहौल पर शायद खरी उतरती है। आज की अस्वीकृति की संस्कृति, कल्चर ऑफ रेप्यूडिएशन का उद्देश्य सुंदरता को खत्म करना है और हमें नवीनता, उल्लंघन और अपवित्रीकरण के रोमांच में आनंद ढूंढना सिखाना है।
ये तो आज की कला और मीडिया पर एक जोरदार कटाक्ष लगता है।
है तो, और आखिर में एक ऐसी बात जो हम शायद रोज महसूस करते हैं या कर सकते हैं अगर ध्यान दें, हम तेजी से बदसूरती से घिरते जा रहे हैं। ऐसी इमारतें जो केवल कार्यात्मक हैं, ऐसी वस्तुएं जो केवल उपयोगी हैं, ऐसी ध्वनियां जो केवल ध्यान खींचने वाली हैं, ये वाकई हमें जगाने वाली बात है।
तो फिर सवाल उठता है कि इन सब विचारों का हम अपनी जिंदगी में करें क्या, मतलब प्रैक्टिकली?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। सबसे पहली चीज तो शायद ये है कि हम अपने आसपास सुंदरता को जानबूझकर देखना शुरू करें, उसे महसूस करें, उसकी कद्र करें। घर में कोई चीज ला रहे हैं या बस अपने कमरे को ठीक कर रहे हैं, तो सिर्फ काम नहीं, सुंदरता का भी ख्याल रखें।
सही बात है। और ये सिर्फ अपने घर तक ही क्यों रहे हैं? हम अपने मोहल्ले, अपने शहर के बारे में भी सोच सकते हैं, है ना?
बिल्कुल। क्या कोई छोटा सा कोना है जिसे हम थोड़ा हरा भरा या साफ सुथरा बनाकर ज्यादा सुंदर बना सकते हैं? क्या हम स्थानीय कारीगरों का सामान खरीदकर उनकी कला को जिंदा रखने में मदद कर सकते हैं? उसमें अक्सर पारंपरिक सुंदरता होती है।
हाँ, ये छोटे छोटे कदम भी फर्क ला सकते हैं। और शिक्षा में, बच्चों के लिए?
शिक्षा में भी सुंदरता का बड़ा रोल हो सकता है। बच्चों को अच्छी कला, संगीत, कहानियों से जोड़ना सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये उनकी संवेदनाओं को जगाता है। उन्हें असली सुंदरता और नकली भड़कीली चीजों के किच के बीच फर्क करना सिखाना उन्हें ज्यादा समझदार बना सकता है।
और प्रकृति की सुंदरता, उसके लिए तो वक्त निकालना ही चाहिए।
हाँ, बिल्कुल। आजकल की भागदौड़ में मुश्किल है, पर थोड़ा सा वक्त, कभी पार्क में टहलना, कभी बस आसमान को देखना, किसी पेड़ के पत्तों को हिलते हुए देखना, ये छोटे से पल भी हमें रोज के तनाव से निकालकर एक अजीब सी शांति दे सकते हैं, जुड़ाव महसूस करा सकते हैं।
तो मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि सुंदरता कोई मतलब ऊपरी चीज नहीं है, ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि इंसान की एक बुनियादी जरूरत है। जैसे हवा, पानी, खाना चाहिए,
हाँ,
वैसे ही हमारी आत्मा को सुंदरता चाहिए। इसे नजरअंदाज करना मतलब खुद को अधूरा रखना है।
सुंदरता को पाने और बनाए रखने के लिए हमें कोशिश करनी होगी, चुनाव करने होंगे। ये आजकल अपने आप थाली में परोसकर नहीं मिलती। हमें इसे ढूंढना होगा, इसे महत्व देना होगा। स्क्रूटिन की किताब भले आज की दुनिया की एक थोड़ी उदास तस्वीर दिखाती हो, लेकिन वो एक उम्मीद भी जगाती है। उम्मीद कि अगर हम सब अपने अपने स्तर पर सुंदरता को अहमियत देना शुरू करें
तो शायद हम मिलकर एक ज्यादा खूबसूरत
और ज्यादा मानवीय दुनिया बना सकते हैं। हाँ,
तो अंत में यही सवाल बचता है, क्या हम सचमुच सुंदरता को उसके गहरे मतलब के साथ फिर से अपने जीवन और समाज में वो जगह देने को तैयार हैं, या हम उपयोगिता, नयेपन और सनसनी के इतने आदि हो गए हैं कि अब लौटना मुश्किल लगता है। ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।